नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने के लिए विविध जलवायु का पूर्ण उपयोग करने पर दिया बल। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रव्यापी अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित। 958 उम्मीदवार विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित। केंद्र सरकार का एकीकृत बागवानी मिशन ऊना जिले के बागवानों को सशक्त करने में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में मार्च महीने में सामान्य से 6 से 8 डिग्री अधिक पहुंचा तापमान। राज्य के 3 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की विविध जलवायु परिस्थितियों का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक मांग में हो रहे बदलाव और भारतीय कृषि क्षेत्र को निर्यात प्रमुख बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। मोदी ने वैश्विक गुणवत्ता और ब्रांडिंग मानकों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों, उद्योग और किसानों को शामिल करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में रोपवे परियोजना परवाड़ू से तारा देवी को चर्चा के लिए रखा जाएगा। 18 मार्च से विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। सत्र में आने वाले बिलों को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जो बिल राज्यपाल के पास लंबित पड़े हैं उन्हें दोबारा सदन में लाने पर विचार हो सकता है। बैठक में विभागों में खाली पदों को भरने, लोक निर्माण जल शक्ति सहित अन्य कुछ विभागों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद भरने का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रव्यापी अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस अवसर पर देश भर के 250 स्थानों पर एथलेटिक्स पर केंद्रित आयोजन किए जाएंगे। ये लीग पूर्वोत्तर राज्यों सहित 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इस लीग में राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों के सहयोग से कई विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप गांवों और छोटे कस्बों की लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2025 का अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुबे दूसरा और आकांश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 25 मई 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9,30,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके समर्पण, मेहनत और लगन ने उन्हें ये उपलब्धि दिलाई है। प्रधानमंत्री ने नए सफर में राष्ट्र की सेवा और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से देश के बागवानों को वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे वे अपनी भूमि पर फल, सब्जियां, मसाले, मशरूम और फूलों की खेती को अपना रहे हैं। योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, नई तकनीकों और कोल्ड चेन जैसे आधारभूत ढांचे के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता राजेश शर्मा।
ऊना जिले में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 4,57,00,000 रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी। यह धनराशि फल उत्पादन को बढ़ावा देने, पौध वितरण, ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली लगाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अलावा दवाइयां तथा उपकरण उपलब्ध करवाने पर व्यय की जाएगी। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए 58 लाख रूपये, पॉलीहाउस एवं हाइब्रिड संरचनाओं हेतु 2,37,00,000 रूपये, बागवानी उपकरणों की खरीद के लिए 16 लाख रूपये की अनुदान राशि तथा रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए 15 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बागवानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। प्रादेशिक समाचार में फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यानी कल राज्य स्तरीय समारोह नाहन में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस समारोह में प्रदेश से करीब 10,000 महिलाएं भाग लेंगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और महिला व बाल विकास निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा संस्करण कल से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्निवल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 64वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के समापन के बाद 8, 9 और 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में महिला एथलीट, इन्फ्लुएंसर्स और फिटनेस चैंपियंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये आयोजन फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों, खिलाड़ियों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक साथ लाता है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल शाम भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। T20 मुकाबलों में भारत 18 जीत के साथ न्यूजीलैंड से आगे है, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मुकाबले जीते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ T20 विश्व कप को अपने पिछले तीनों मुकाबले में जीत हासिल की है। प्रदेश में आज भी मौसम आमतौर पर साफ है। राज्य में मार्च महीने में ही लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 2 दिन तक 3 जिलों मंडी, कुल्लू और सोलन में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना है।
हाई रिस्क जो क्षेत्र है जिसमें विशेषकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, मंडी है, सुंदरनगर क्षेत्र है, भुंतर है, इसमें शिमला भी है। यहाँ पे जो दिन के तापमान है, देखिए एवरेज पूरे प्रदेश में तकरीबन देखिए 6 से लेकर 8 डिग्री तक समाचार रिकॉर्ड किए गए हैं। और बीते 24 घंटों में देखिए जो भुंतर है, सुंदरनगर एरिया है, यहाँ पे हीट वेव कंडीशन भी विटनेस की गई थी। और मौसम की बात करें, देखिए आज 7 तारीख को जो हमारे क्षेत्र हाई रिस्क जिसमें विशेषता कुल्लू, चंबा और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर कल 8 तारीख को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। और एक्टिविटी देखिए 9 तारीख से हालांकि WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा, परंतु 9 और 10 को इसका प्रभाव केवल डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के आसपास क्षेत्र में हो सकता है।
वहीं सर्दियों में इस बार बारिश कम होने और सूखे का दौर लंबा होने के चलते जंगलों में आग लगने के दृष्टिगत वन विभाग सतर्क हो गया है। DFO धर्मशाला अमित शर्मा ने बताया कि वनमंडल धर्मशाला के तहत 61,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 40,000 हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ हैं, जिसमें आग तेजी से फैलती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वनों में आग लगने की सूचना तुरंत वन विभाग को दें और विभाग का सहयोग करें।
बिल्कुल, इस बार पूरे विंटर सीजन में एक ही हमें रेनफॉल देखने को मिला है, तो ड्राई सीजन थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है। इस बार जो है फायर सीजन, हमने सारे 5 टीमें रेंज स्तर पे गठित की हैं, एक कंट्रोल रूम हमने डिवीजन स्तर पे ACF की अध्यक्षता में बना रखा है। इसके अलावा लगभग 40,000 हेक्टेयर में हमारे पास चील के जंगल हैं। चील एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज भी है, रेजिंग एक्शन के ध्यान से या फिर के मद्देनजर रख तो सेंसिटिव रहते हैं चील के जंगल फॉरेस्ट फायर के लिए। लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो मिलजुल के समय समय पे हमें सूचना भी दें कि कौन से एरिया में आग लगी है और हमारे साथ आग बुझाने के लिए आगे बढ़कर आएं।
और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल घोषित परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, अनुज अग्निहोत्री टॉपर, शीर्ष 10 में 3 बेटियां, हिमाचल के विकास की 159वीं रैंक। इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है, कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रूपये जीतने वाले विकास ने हासिल किया 159वां रैंक। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, मुझे 70,000 करोड़ रूपये मिलते तो आज हिमाचल कर्ज मुक्त होता। दिव्य हिमाचल के अनुसार, जेल भेजे जाएंगे सारे भ्रष्टाचारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने के लिए विविध जलवायु का पूर्ण उपयोग करने पर दिया बल। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रव्यापी अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, 958 उम्मीदवार विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित। केंद्र सरकार का एकीकृत बागवानी मिशन ऊना जिले के बागवानों को सशक्त करने में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश में मार्च महीने में सामान्य से 6 से 8 डिग्री अधिक पहुंचा तापमान, राज्य के 3 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।